एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया के ठीक नीचे है। क्वांटम दुनिया। नाम सुन के थोड़ा भारी लगता है ना?
हाँ, बिल्कुल लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये समझना हम सबके लिए जरूरी हो गया है।
और इस सफर में हमारे गाइड होंगे जॉन पोल्कनहॉर्न और उनकी किताब क्वांटम थ्योरी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किताब हमें रास्ता दिखाएगी।
बिल्कुल, और देखिए ये सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है, ये हमारी असलियत की समझ को ही बदल देती है। हमारी टेक्नोलॉजी जैसे फोन, कंप्यूटर, सब इसी पर तो टिके हैं।
हाँ, और उससे भी आगे जाकर ये कारण कार्य, ब्रह्मांड, यहाँ तक कि चेतना पर भी बड़े सवाल खड़े करती है।
तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस रहस्यमयी दुनिया को थोड़ा आसान बनाएं, पोल्किंगहॉर्न की मदद से, बिना डरावने गणित के। चलिए तो पहले हमारे गाइड जॉन पोल्किंगहॉर्न के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये कोई आम लेखक नहीं थे, 1930 में जन्मे, 2021 में गुजरे।
हाँ, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणितीय भौतिकी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। पार्टिकल फिजिक्स में उनका नाम था। 1974 में रॉयल सोसाइटी के फेलो भी बने, मतलब टॉप के साइंटिस्ट।
लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। 1979 में जब वो अपने करियर के पीक पर थे, उन्होंने सब छोड़ दिया।
हाँ, प्रोफेसरशिप छोड़ दी और चर्च ऑफ इंग्लैंड में पादरी बनने चले गए। सोचिए जरा, एक विश्व स्तरीय भौतिक विज्ञानी और एक धर्मशास्त्री, एक ही इंसान।
कमाल है, और शायद इसी वजह से वो क्वांटम थ्योरी को इतने अलग नजरिए से देख पाते हैं, सिर्फ समीकरण नहीं बल्कि वास्तविकता के गहरे मतलब ढूंढते हुए।
बिल्कुल, वो विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक पुल जैसा बनाते हैं, इसीलिए वो मुश्किल चीजों को भी इतनी सावगोई से और एक दार्शनिक गहराई के साथ समझा पाते हैं।
वो मुश्किल गणित को हटाकर उसके पीछे के आइडिया पर फोकस करते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है।
हाँ, मतलब वो सिर्फ क्या नहीं बताते बल्कि क्यों और तो फिर क्या पर भी सोचने को मजबूर करते हैं।
तो ये किताब क्वांटम थ्योरी ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन असल में है क्या?
ये क्वांटम सिद्धांत का एक नक्शा है, लेकिन विचारों का नक्शा। पोल्किंगहॉर्न कहते हैं कि इसे समझने के लिए गणित नहीं बल्कि अपना कॉमन सेंस छोड़ने की हिम्मत चाहिए।
कॉमन सेंस मतलब जो हम रोज देखते समझते हैं?
हाँ, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की समझ बड़े पैमाने की दुनिया पर आधारित है। क्वांटम दुनिया के नियम बिल्कुल अलग हैं। उसे समझने के लिए पुरानी सोच को थोड़ा परे रखना पड़ता है।
अच्छा, तो किताब का मेन आइडिया क्या है?
मेन आइडिया ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने हमारी दुनिया की समझ को जड़ से हिला दिया है। वो न्यूटन वाली घड़ी जैसी प्रिडिक्टेबल दुनिया थी ना, क्वांटम ने कहा नहीं, दुनिया वैसी नहीं है।
कैसी है फिर?
वो अंदर से ही अनिश्चित है। चीजें अजीब तरह से जुड़ी हुई हैं और बिल्कुल हमारे इंट्यूशन के खिलाफ जाती हैं।
तो किताब हमें एक सफर पे ले जाती है।
हाँ, एक कहानी की तरह। कैसे पुरानी फिजिक्स कुछ पहेलियों के सामने फेल हो गई। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो समझा नहीं पा रही थी।
और फिर कैसे नए हीरो आए, प्लैंक, आइंस्टीन, बोर, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, इन्होंने मिलकर ये नई क्वांटम समझ बनाई।
बिल्कुल, और इसमें वो सारी अजीब चीजें आती हैं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, अनिश्चितता सिद्धांत, सुपरपोजिशन और वो माप का रहस्य।
पोल्किंगहॉर्न का मकसद हमें दुनिया देखने का एक नया चश्मा देना है, एक ऐसी दुनिया जो ज्यादा बारीक है, ज्यादा डायनामिक, ज्यादा जुड़ी हुई और संभावनाओं से भरी हुई।
चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। अध्याय एक, क्वांटम क्रांति, यहां से शुरुआत होती है।
हाँ, उस दौर से जब लगता था कि फिजिक्स में सब कुछ पता चल चुका है, न्यूटन के नियम, मैक्सवेल के समीकरण, सब सेट था।
एकदम बिल्कुल घड़ी की तरह चलने वाला ब्रह्मांड, सब तयशुदा। लेकिन फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे ऐसे आए जो पुरानी थियोरी से मेल नहीं खाते थे।
जैसे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाली बात, गर्म चीजें ऊर्जा कैसे छोड़ती हैं? पुराने नियम तो कह रहे थे कि अनंत ऊर्जा निकलनी चाहिए, जो हो नहीं सकता।
और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रोशनी डालने पर मेटल से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं और एक खास पैटर्न में ही क्यों, ये भी समझ नहीं आ रहा था।
यहीं पर मैक्स प्लैंक आए 1900 में। उन्होंने हिचकिचाते लिए कहा कि शायद ऊर्जा लगातार नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स क्वांटा में आती जाती है।
हाँ, और फिर आइंस्टीन ने 1905 में एक और धमाका किया, कहा कि रोशनी खुद ही इन क्वांटम पैकेट्स यानी फोटोन कणों से बनी है।
ये तो बिल्कुल नई बात थी, यहीं से क्वांटम क्रांति की असली शुरुआत हुई। ये जरूरत बन गई थी, कोई हवा हवाई बात नहीं थी।
बिल्कुल। अब आते हैं अध्याय दो पर, मुख्य अवधारणाएं। यहाँ क्वांटम दुनिया के कुछ बेसिक नियम हैं। पहला, वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी।
कण भी तरंग भी, ये कैसे?
हाँ, यही तो कमाल है। इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें कभी तो कण की तरह दिखती हैं, जैसे कोई छोटी गेंद, और कभी तरंग की तरह फैल जाती हैं, जैसे पानी की लहरें।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना?
अरे हाँ, वो तो दिमाग हिला देता है। आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन भेजते हैं दो झिरियों वाली स्क्रीन पर, वो स्क्रीन पर एक कण की तरह निशान बनाते हैं। लेकिन
जब बहुत सारे निशान जमा हो जाते हैं तो पैटर्न ऐसा बनता है जैसे वो तरंगे थी और दोनों झिरियों से एक साथ निकली थी।
बिल्कुल, जैसे हर इलेक्ट्रॉन अकेला होने के बावजूद दोनों रास्तों से गया हो और खुद से ही इंटरफेयर कर रहा हो। ये कैसे मुमकिन है?
तो यहीं पर वो वेव फंक्शन का आइडिया आता है।
हाँ, वेव फंक्शन एक गणितीय चीज है। ये नहीं बताता कि कण कहाँ है, ये बताता है कि उसके कहीं पाए जाने की संभावना क्या है।
और सुपरपोजिशन?
सुपरपोजिशन मतलब जब तक आप देखते नहीं हैं, कण एक ही समय में कई अवस्थाओं के मिले जुले रूप में हो सकता है, जैसे झिर्री ए से भी गुजरना और झिर्री बी से भी गुजरना एक साथ।
बाप रे, और जैसे ही हम देखते हैं
तो बूम, सारी संभावनाएं गायब। कण एक निश्चित अवस्था चुन लेता है। इसे कहते हैं वेव फंक्शन का पतन। जैसे ही आप देखते हैं, संभावना हकीकत बन जाती है।
पर ये होता कैसे है? कौन तय करता है? ये आज भी बड़ा सवाल है ना?
हाँ, ये क्वांटम की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, माप का रहस्य।
अब आगे अध्याय तीन, अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग का फेमस प्रिंसिपल।
हाँ, और पॉल किंगहॉर्न साफ करते हैं कि ये हमारी नापने की कोई कमी या गलती नहीं है, ये प्रकृति का ही एक बुनियादी नियम है।
मतलब हम चाहे कितनी भी अच्छी मशीन बना लें, कुछ चीजें एक साथ पूरी सटीकता से जान ही नहीं सकते।
बिल्कुल, जैसे कण की पोजीशन, वो कहाँ है, और उसका मोमेंटम, उसकी रफ्तार और दिशा, इन दोनों को एक साथ बिल्कुल सटीक जानना नामुमकिन है।
एक को ज्यादा सटीक जानेंगे तो
दूसरा
उतना ही धुंधला अनिश्चित हो जाएगा।
ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है जो प्रकृति में ही बना हुआ है।
और इसका मतलब सिर्फ हमारे जानने तक सीमित नहीं है।
नहीं, यही तो गहरी बातें ये है कि कण के पास एक ही समय में बिल्कुल निश्चित पोजीशन और बिल्कुल निश्चित मोमेंटम होता ही नहीं है। ये गुण तभी उभरते हैं जब हम उन्हें नापते हैं।
तो वो न्यूटन वाली दुनिया जहाँ सब कुछ पहले से तय था, उसका तो खेल खत्म।
हाँ, समझिए कि ये उस नियतवाद के ताबूत में आखिरी कील थी। अगर आप शुरुआत ही पूरी तरह नहीं जान सकते तो भविष्य की पक्की भविष्यवाणी कैसे करेंगे? भविष्य असल में खुला है, संभावनाओं से भरा।
अब आते हैं उस चीज पर जिसे आपने सबसे हैरतअंगेज कहा था, अध्याय चार, उलझाओ यानी एंटैंगलमेंट।
हाँ, पॉल किंगहॉर्न इसे क्वांटम सिद्धांत की सबसे चौंकाने वाली खोज कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है।
इसमें होता क्या है?
इसमें दो या ज्यादा कण इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वो एक ही बन जाते हैं। उनका भाग्य एक दूसरे से बंध जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, मीलों दूर या लाइट ईयर्स दूर।
मतलब अगर एक कण के साथ कुछ होता है तो दूसरे पर तुरंत असर पड़ता है।
हाँ, जैसे मान लो दो उलझे हुए कण हैं ए और बी। अगर आप ए का स्पिन नापते हैं और वो ऊपर निकलता है तो आपको उसी पल पता चल जाता है कि बी का स्पिन नीचे ही होगा, चाहे बी चांद पर ही क्यों ना हो।
उसी पल, रोशनी की रफ्तार से भी तेज।
हाँ, यही बात आइंस्टीन को बहुत परेशान करती थी। वो इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहते थे। उन्हें लगता था कि जरूर कोई गड़बड़ है, कोई छिपी हुई जानकारी होगी।
लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं?
एक्सपेरिमेंट्स जो जॉन बेल के काम के बाद हुए हैं, उन्होंने बार बार क्वांटम मैकेनिक्स को सही साबित किया है। उलझाव असली है, आइंस्टीन का छिपा हुआ चर वाला आइडिया गलत था।
तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मांड नॉन लोकल है।
हाँ, इसका मतलब है कि चीजें गहराई से जुड़ी हुई हैं, इस तरह से जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। दूरी शायद उतनी एब्सोल्यूट नहीं है जितनी हम सोचते हैं। वास्तविकता एक अविभाज्य संपूर्ण है।
ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अच्छा, अब अध्याय पांच और छह पर आते हैं, व्याख्याएं और क्वांटम वास्तविकता।
हाँ, यहाँ सवाल उठता है कि सबका मतलब क्या निकालें? ये जो माप वाली पहेली है कि देखने पर संभावनाएं हकीकत क्यों बन जाती हैं, इसका क्या जवाब है?
और यहाँ कोई एक जवाब नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं, कई अलग अलग व्याख्याएं हैं, वैज्ञानिक भी बटे हुए हैं। जैसे एक है कोपेनहेगन व्याख्या जो बोर और हाइजेनबर्ग से जुड़ी है।
वो क्या कहती है?
वो कहती है भाई ज्यादा फिलॉसफी में मत पढ़ो, थियरी काम करती है, एक्सपेरिमेंट के नतीजे बताती है, बस इतना काफी है। ये मत पूछो कि जब तुम देख नहीं रहे थे तब क्या हो रहा था। कोई क्वांटम दुनिया नहीं है, बोर ने कहा था, सिर्फ क्वांटम विवरण है।
अच्छा, ये तो थोड़ा अजीब है। और दूसरी?
एक और है मैनी वर्ल्ड्स। ये कहती है कि वेव फंक्शन कभी कोलैप्स होता ही नहीं, हर माप पर ब्रह्मांड कई शाखाओं में बन जाता है, हर संभावना एक अलग यूनिवर्स में सच हो जाती है।
ओ, मतलब अनगिनत समानांतर दुनियाएं।
हाँ, आप जिस दुनिया में हैं वहां एक नतीजा निकला, दूसरी दुनिया में दूसरा। फिर डेविड बॉम जैसे लोगों की हिडन वेरिएबल्स थियरी है जो मानती है कि क्वांटम अधूरा है, कोई गहरी नियतिवादी सच्चाई छिपी है।
और पॉलकिनहॉर्न का अपना क्या नजरिया है?
वो क्रिटिकल रियलिज्म की बात करते हैं, मतलब क्वांटम सिद्धांत अजीब जरूर है पर यह दुनिया की सच्ची तस्वीर दिखा रहा है भले ही पूरी न हो। दुनिया ठोस चीजों का कलेक्शन नहीं बल्कि संभावनाओं और बदलाव की एक डायनामिक प्रक्रिया है।
फिर आखिर के चैप्टर्स में क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात आती है।
हाँ, QFT क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी को मिलाती है, ये और भी गहरी तस्वीर देती है।
इसमें क्या नया है?
यहाँ फंडामेंटल चीजें कण नहीं बल्कि हर जगह फैले हुए फील्ड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और कण वो इन फील्ड्स में होने वाली छोटी छोटी उत्तेजना या कंपन है, जैसे पानी में लहरें।
अच्छा, तो कण आते जाते रहते हैं।
हाँ, QFT समझाती है कि कण कैसे बन सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं। यहाँ वर्चुअल कणों का भी आइडिया आता है जो मानो शून्य से उधार लेकर पल भर के लिए अस्तित्व में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं।
वाह, तो मतलब क्वांटम क्रांति अभी खत्म नहीं हुई है?
बिल्कुल नहीं, ये जारी है और ये हमें बार बार दिखाती है कि ब्रह्मांड हमारे कॉमन सेंस से कहीं ज्यादा अजीब, ज्यादा जुड़ा हुआ और ज्यादा संभावनाओं से भरा है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर कुछ खास बातें निकालनी हो तो क्या होंगी? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो पुरानी घड़ी जैसी प्रेडिक्टेबल दुनिया की सोच अब नहीं चलती।
हाँ बिल्कुल, शास्त्रीय नियतत्ववाद का अंत। हकीकत में संभावना और अनिश्चितता बुनी हुई है, जैसे हम मानसून का अंदाजा लगाते हैं पर पक्का नहीं कह सकते, कुछ वैसा ही प्रकृति के मूल स्वभाव में है।
और दूसरी बात, अदृश्य और अजीब की वास्तविकता, ये सुपरपोजिशन, वेव फंक्शन, ये सिर्फ गणितीय चालें नहीं है, ये सच में दुनिया का हिस्सा है।
हाँ, जैसे वाईफाई सिग्नल हमें दिखते नहीं पर है और काम करते हैं, वैसे ही ये क्वांटम चीजें हैं, अदृश्य पर असली।
तीसरा, समग्रता और नॉन लोकैलिटी। उलझाव दिखाता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, अलग थलग कुछ भी नहीं।
बिल्कुल, जैसे एक परिवार में होता है ना, एक सदस्य दूर भी हो पर उसका असर सब पर पड़ता है। क्वांटम लेवल पर ये जुड़ाव और भी गहरा है।
चौथा, माप और अवलोकन की भूमिका। हमारा देखना सिर्फ देखना नहीं है, ये वास्तविकता को बनाने में हिस्सा लेता है। ये सोचकर ही अजीब लगता है।
हाँ, क्या वास्तविकता हमारे देखने पर निर्भर करती है? ये बड़े दार्शनिक सवाल खड़े करता है।
पांचवा, ये संभावना और प्रक्रिया का ब्रह्मांड है। चीजें बनी बनाई नहीं है, वो लगातार बन रही हैं, संभावनाएं हकीकत में बदल रही हैं, एक सतत प्रवाह।
जैसे नदी बहती है, बदलती है,
वैसे ही।
और आखिरी बात, बौद्धिक विनम्रता। क्वांटम हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी समझ से परे हो सकता है, हमें हमेशा सीखने और हैरान होने के लिए तैयार रहना चाहिए।
किताब में कुछ ऐसे विचार हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं, जैसे पहला विचार, ये धुंधली अनिश्चित क्वांटम दुनिया कोई और दुनिया नहीं है, ये उसी ठोस दुनिया की बुनियाद है जिसमें हम रहते हैं।
हाँ, मतलब जो हमें सॉलिड लगता है वो असल में क्वांटम संभावनाओं के डांस से ही बना है।
दूसरा विचार, हमें ये पूछने से बचना चाहिए कि जब हम देख नहीं रहे तो कण असल में क्या कर रहा है। अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि उसके पास एक साथ तय गुण होते ही नहीं, वो मापने पर ही सामने आते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है, मतलब चीजों का वजूद हमारे देखने से जुड़ा है या कम से कम उनके गुण, यह हमारे ऑब्जेक्टिव रियलिटी के आइडिया को चैलेंज करता है।
बिल्कुल, और तीसरा विचार, उलझाव हमें बताता है कि ब्रह्मांड में एक गहरा डरावना अंतर संबंध है, जुड़े हुए कण हमेशा एक रहते हैं चाहे कितनी भी दूर हों, दुनिया अलग अलग चीजों का जोड़ नहीं, एक पूरा सिस्टम है।
ये तो वाकई मतलब ब्रह्मांड की एक मौलिक एकता की तरफ इशारा है जो स्पेस और टाइम की हमारी समझ से परे है।
और ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी क्वांटम समझ पर बनी है।
अरे हाँ, जरा सोचिए, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे स्मार्टफोन्स, उनके अंदर की चिप्स क्वांटम नियमों के बिना काम ही नहीं कर सकती, ट्रांजिस्टर क्वांटम इफेक्ट है।
लेजर, सीडी प्लेयर से लेकर सर्जरी तक, और वो इंटरनेट वाला फाइबर ऑप्टिक्स, सब लेजर पर। और लेजर क्वांटम चीज है।
एमआरआई मशीन इस अस्पतालों में वो शरीर के अंदर देखने के लिए परमाणुओं के स्पिन का इस्तेमाल करती है, जो एक क्वांटम गुण है।
जीपीएस, वो भी एटॉमिक क्लॉक्स पर निर्भर करता है, और वो क्लॉक्स क्वांटम लेवल पर काम करती हैं। सोलर सेल भी तो फोटोन का इस्तेमाल करते हैं।
सही बात है, हमारी दुनिया सचमुच क्वांटम पर चल रही है, और शायद ये सोच हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित कर सकती है।
कैसे?
जैसे अनिश्चितता को स्वीकारना। जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और शायद होना भी नहीं चाहिए। क्वांटम हमें सिखाता है कि भविष्य खुला है, संभावनाएं हैं।
और अपने कॉमन सेंस पर सवाल उठाना, जो हमें सीधी साधी बात लगती है, जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। दिमाग खुला रखना जरूरी है।
और वो अंतर संबंध वाली बात, उलझाओ हमें याद दिलाता है कि हम सब जुड़े हुए हैं, हमारे एक्शंस का असर पड़ता है, चाहे वो पर्यावरण हो या समाज।
और आखिर में जिज्ञासा और विस्मय बनाए रखना, ब्रह्मांड कितना अजीब और अद्भुत है, ये जानने की इच्छा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।
तो कुल मिला के मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि वास्तविकता हमारी रोज की समझ से कहीं ज्यादा अजीब, ज्यादा गहरी और संभावनाओं से भरी है। वो घड़ी वाली दुनिया अब नहीं रही।
मेरे लिए भी। और सबसे ज्यादा दिमाग में घूमने वाली चीज है उलझाओ, ये सोचना कि ब्रह्मांड इतनी गहराई से जुड़ा है कि दूरी भी बेमानी हो जाती है। ये हमारी जगह और समय की समझ को पूरी तरह से बदल देता है।
हाँ, और ये एक सवाल छोड़ जाता है सबके लिए सोचने को। अगर हमारा देखना, हमारा अवलोकन वास्तविकता को बनाने में भूमिका निभाता है, तो क्या हमारी चेतना का रोल उससे कहीं ज्यादा गहरा है जितना हम मानते आए हैं?
ये वो जगह है जहाँ विज्ञान और दर्शन मिलते हैं। पोल्किंगहॉर्न जैसे लोग हमें इन सवालों तक ले जाते हैं।
बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।